अगर एक ऐसी स्थिति की कल्पना की जाए जहां एक इंसान ने जीवन भर सारे सही काम किए हों,
हाँ मतलब एकदम आदर्श जीवन जिया हो,
बिल्कुल उसने कभी किसी को धोखा ना दिया हो, हमेशा दूसरों की मदद की हो, सारे नियम माने हो, लेकिन बदले में क्या मिलता है?
शायद सब कुछ छिन जाना।
हाँ, उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है, परिवार खत्म हो जाता है, स्वास्थ्य चला जाता है और सारी संपत्ति बस राख हो जाती है।
ये तो मतलब ये अपने आप में एक बहुत भयानक त्रासदी है।
बिल्कुल है, लेकिन असली मानसिक प्रहार तब होता है जब उसके अपने करीबी दोस्त, जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, सांत्वना देने के बजाय आते हैं और कहते हैं कि भाई ये सब तुम्हारी ही गलती है।
ये सिर्फ दुख की बात नहीं है, ये किसी भी इंसान के मनोविज्ञान को उसके दिमाग को पूरी तरह से तोड़ देने वाली स्थिति है।
एकदम सही बात है, और इस गहन चर्चा में आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं। हम डॉक्टर जॉन वॉल्टन के बुक ऑफ जॉब के विश्लेषण पर गौर करेंगे, विशेषकर सत्र 14 यानी जॉब 15 से 21 तक।
हाँ, और ये चर्चा बहुत अहम है क्योंकि हम सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंसान की उस हताशा को डीकोड कर रहे हैं जो तब पैदा होती है जब दुनिया के काम करने का उसका पूरा नजरिया अचानक से काम करना बंद कर देता है।
बिल्कुल, और इस चर्चा का मिशन भी यही है। हम इस सामग्री में सिर्फ श्लोकों या वर्सेस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि जॉब और उसके दोस्त एलिफेज, बिल्डैड और जोफा किस तरह के बयानबाजी की रणनीति या कहें कि रिटोरिकल स्ट्रेटजी अपना रहे हैं।
हाँ, क्योंकि पहले दौर के संवाद में शायद फिर भी थोड़ी बहुत सहानुभूति बची थी।
हाँ, थोड़ी बहुत,
लेकिन जैसे ही हम इस 14वें सत्र में आते हैं माहौल पूरी तरह से बदल चुका है।
एकदम बदल जाता है, दोस्त अब जॉब पर सीधा और बहुत ही तीखा प्रहार कर रहे हैं। संवाद की शुरुआत एलिफेज से होती है और वो क्या कहता है, वो सीधे तौर पर जॉब की बातों को बकवास और अपमानजनक करार देता है।
एलिफेस की इस रणनीति को समझना यहाँ बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, हाँ बताइए।
आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो अगर हम इसके पीछे की वजह देखें तो हमें उस समय के कर्मों के फल के सिद्धांत यानी रिट्रीब्यूशन प्रिंसिपल को समझना होगा।
अच्छा, वो लेन देन वाला सिस्टम।
बिल्कुल, प्राचीन काल में और सच कहें तो आज भी कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि ब्रह्मांड एक बहुत ही स्पष्ट लेन देन पर चलता है, मतलब अच्छे काम करोगे तो सुरक्षा मिलेगी और बुरे काम करोगे तो सजा।
हाँ, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं।
सही बात है, और ये सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं था, ये उनके समाज के काम करने का, उनकी पूरी मानसिक शांति का आधार था। एलिफस इसी आधार पर तर्क देता है कि जॉब पर जो विपत्ति आई है वो साझा मानवीय भ्रष्टाचार का ही नतीजा है।
मतलब वो जॉब को दुष्टों की श्रेणी में डाल रहा है।
एग्जैक्टली।
उसका कहना है कि चूंकि दुष्ट लोगों को हमेशा खोज निकाला जाता है और सजा मिलती है, इसलिए जॉब को ये सोचना चाहिए कि उसमें और उन दुष्टों में कितनी समानता है।
एक सेकंड, रुको। अगर इस पर थोड़ा गहराई से विचार किया जाए तो क्या ये एलिफेज की तरफ से एक बहुत ही क्रूर बचाव की रणनीति नहीं है?
आप ऐसा कह सकती हैं। कैसे?
मतलब अगर जॉब निर्दोष है और फिर भी उसे ये भयानक सजा मिल रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जो कर्मफल का सिद्धांत है वो पूरी तरह से झूठा है।
हाँ, बिल्कुल झूठा है।
और अगर वो सिद्धांत टूट गया तो कल को एलिफेज के साथ भी बिना किसी कारण के ये सब हो सकता है, ये तो किसी को भी डरा देगा।
एकदम सही पकड़ा, और इसी डर से बचने के लिए एलिफेज को यह साबित करना ही होगा कि जॉब दोषी है। वॉल्टन स्पष्ट करते हैं कि एलिफेज जॉब को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने शब्दों से खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहा है, मतलब अब बात जॉब की मदद करने की रही ही नहीं, वो अपनी खुद की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को बचा रहे हैं ना?
बिल्कुल, अपनी दुनिया को ढहने से बचाने की लड़ाई है ये। अगर उन्हें सुरक्षित महसूस करना है तो उन्हें जॉब को दुष्टों की श्रेणी में धकेलना ही पड़ेगा।
ये तो मानसिक आत्मरक्षा का बहुत ही क्रूर रूप हो गया, लेकिन जॉब की प्रतिक्रिया भी कम चौंकाने वाले नहीं है यहाँ पर।
हाँ, जॉब पलटवार करता है।
बिल्कुल, वो एलिफेज से कहता है कि भाई बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। वो मानता है कि एक दोस्त के रूप में एलिफेज को उसका हौसला बढ़ाना चाहिए था।
सही बात है, दोस्त का काम तो वही होता है।
लेकिन वो उस पर इल्जाम लगा रहा है। स्रोत सामग्री से पता चलता है कि जॉब खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है। वो कहता है कि ईश्वर उस पर हमला कर रहा है और उसे दुश्मनों के बीच छोड़ दिया गया है।
और ये जॉब की हताशा का एकदम निचला स्तर है। वो मान चुका है कि उसे मौत के अलावा किसी और चीज की उम्मीद नहीं बची है।
फिर भी वो अपनी सच्चाई पर डटा रहता है ना?
हाँ बिल्कुल, वो अपनी धार्मिकता और सच्चाई नहीं छोड़ता। वो कहता है कि उसे अपना पक्ष रखने के लिए एक रक्षक, एक एडवोकेट की जरूरत है।
यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास दिखता है मुझे।
क्या?
जॉब ये महसूस कर रहा है कि ईश्वरी उस पर बिना कारण हमला कर रहा है, और फिर भी वो उसी ईश्वरीय व्यवस्था से एक रक्षक की मांग कर रहा है जो उसे सही साबित कर सके।
बिल्कुल, और यही विरोधाभास इस कहानी को इतना शक्तिशाली बनाता है। और खैर, ये स्थिति तब और भी ज्यादा घुटन भरी हो जाती है जब बिलडैड की एंट्री होती है।
बिलडैड, वो तो LFS से भी ज्यादा कठोर है।
वॉल्टन के अनुसार बिलडैड की बातें बहुत ही संक्षिप्त हैं, लेकिन हद से ज्यादा तीखी हैं। वो सीधे ईश्वर के न्याय की कठोरता पर बात करता है।
वो क्या कहता है?
वो कहता है कि ईश्वरीय न्याय अचूक और निर्दयी है। बिलडैड का सीधा सा निष्कर्ष है कि जो लोग इस न्याय का शिकार होते हैं, और यहाँ वो साफ तौर पर जॉब की ओर इशारा कर रहा है, वे वास्तव में ईश्वर को नहीं जानते।
मतलब वो जॉब के सारे दावों को सिरे से खारिज कर देता है
एकदम।
उसका तर्क है कि अगर तुम्हारे हालात इतने बुरे हैं तो तुम्हारी इस सो कॉल्ड सच्चाई का कोई मोल नहीं है।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के दौर में मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी नौकरी खो दे और उसके दोस्त उसे ये कहने लगे कि भाई जरूर तुम्हारे काम करने के तरीके में या तुम्हारे वाइब में ही कोई खोट होगा, तभी ब्रह्मांड ने तुम्हें यह सजा दी है।
बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। दोस्तों का पूरा फोकस अपनी थ्योरी बचाने पर है।
लेकिन जॉब हार नहीं मानता। डॉक्टर वॉल्टन बताते हैं कि जॉब बिलडैड को भी जवाब देता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। जॉब इस बात पर अड़ा है कि ये ईश्वर का समझ से परे गुस्सा है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है।
हाँ, एक ऐसा गुस्सा जिसका कोई तार्किक आधार ही नहीं है।
और दोस्तों के इतने हमलों के बाद भी उसे यकीन है कि अंत में कोई उसका बचाव करेगा, उसे सही साबित करेगा। और यही वो चीज है जो जॉब को उसके दोस्तों से अलग करती है। दोस्त एक बने बनाए सिद्धांत से चिपके हैं, लेकिन जॉब अपने खुद के अनुभव पर भरोसा कर रहा है
क्योंकि उसे पता है कि उसने कोई पाप नहीं किया है।
बिल्कुल, और जब एलिफाज और बिलदाद उसे अपनी मान्यताओं के सांचे में ढालने में फेल हो जाते हैं, तब तर्कों की जगह शुद्ध क्रोध ले लेता है।
अरे हाँ, और ये गुस्सा जोफर के रूप में फूटता है। जब बहस काम नहीं आती तो इंसान अक्सर गुस्से पर उतर आता है ना?
एकदम सही। जोफर बहुत ही आक्रामक तरीके से संवाद में आता है।
तो जोफर की रणनीति क्या है यहाँ?
जोफर की रणनीति पूरी तरह से आहत भावनाओं पर टिकी है। वो कहता है कि जॉब की बातें उसे पर्सनली ठेस पहुंचा रही हैं।
अच्छा।
हाँ, उसका तर्क है कि जॉब का बार बार ये कहना कि वो निर्दोष है, यही उसका सबसे बड़ा अहंकार है। और उन प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ऐसा अहंकार सिर्फ और सिर्फ दुष्ट लोगों की निशानी होता है।
यहाँ मैं थोड़ा रुक कर एक अलग नजरिए से सोचना चाह रही हूँ।
हाँ बताइए।
अगर हम जोफर की जगह खड़े होकर देखें तो क्या सच में जॉब का रवैया थोड़ा अहंकारी नहीं लगता? मतलब जरा सोचिए, एक इंसान आसमान की तरफ देखकर कह रहा है कि मैं पूरी तरह से बेदाग हूँ और ये पूरा ब्रह्मांड, ये ईश्वरीय व्यवस्था ही गलत है। क्या ये अपने आप में अहंकार नहीं है?
ये बहुत ही शानदार सवाल है, और सच कहूं तो यही बहुत जोफर को अंदर तक परेशान कर रही है।
हाँ, क्योंकि जोफर के लिए तो व्यवस्था परफेक्ट है।
बिल्कुल, उसके नजरिए से कोई भी इंसान पूरी तरह से निर्दोष तो हो ही नहीं सकता, इसलिए जॉब का ये दावा उसे सीधे तौर पर ईश निंदा लगता है। लेकिन वॉल्टन का विश्लेषण हमें बताता है कि जॉब वास्तव में क्या कह रहा है। जॉब ये दावा नहीं कर रहा कि वो जन्म से ही परफेक्ट है।
तो वो क्या कह रहा है?
वो बस ये कह रहा है कि उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके अनुपात में उसे इतनी भयंकर सजा मिले। जोफर जिसे अहंकार कह रहा है, वो असल में जॉब की अपनी सत्यनिष्ठा, अपनी इंटीग्रिटी के प्रति कमिटमेंट है।
हाँ, समझी। और मुझे लगता है यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा अहम मोमेंट आता है।
वो कैसे?
जॉब ये समझ जाता है कि जोफर या बाकी दोस्तों से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, वो उसकी बात कभी नहीं समझेंगे, इसलिए वो कुछ बहुत ही असाधारण करता है। वो जोफर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है।
एकदम, वो जवाब देना ही बंद कर देता है।
मतलब हेटर्स को इग्नोर करके सीधे मैनेजमेंट से बात करने का फैसला।
बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। जब जॉब दोस्तों को इग्नोर करता है तो वो वास्तव में अपनी नजर उस छोटे से घेरे से निकालकर पूरी दुनिया पर डालता है। वो सिर्फ खुद को नहीं पूरे समाज को देखता है, और तब उसे एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई नजर आती है।
हाँ, कि दुनिया में ऐसे बहुत से दुष्ट लोग हैं जो खुलेआम ईश्वर को चुनौती देते हैं, बुरे काम करते हैं, और फिर भी वो फल फूल रहे हैं।
एकदम सही, वे सफल हो रहे हैं, उनके परिवार सुरक्षित हैं।
कि जॉब यहाँ उस रेट्रीब्यूशन प्रिंसिपल या कर्म फल के सिद्धांत को पूरी तरह से नकारने के करीब पहुंच जाता है।
हाँ, वो उसे खारिज कर रहा है।
लेकिन एक सेकंड, अगर इसके निहितार्थ को समझा जाए तो ये विचार बहुत ही खौफनाक है।
क्यों?
क्योंकि अगर जॉब ये देख रहा है कि दुष्ट लोग मजे में हैं, तो वो एक बहुत बड़ी तार्किक कड़ी जोड़ रहा है।
अगर ईश्वर दुष्टों को सजा नहीं दे रहा तो इसका सीधा सा मतलब है कि ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों की रक्षा भी नहीं करता।
बिल्कुल, मतलब वो पूरा का पूरा ढांचा, वो सिस्टम जिसे उसके दोस्त सच मानकर बैठे थे, वो असल में एक बहुत बड़ा झूठ है। ये तो किसी की भी दुनिया हिला देने वाली बात है।
और यही इस पूरे खंड की सबसे गहरी अंतर्दृष्टि है। जॉब महसूस कर लेता है कि व्यवस्था टूट चुकी है। वो उस दर्दनाक सच का सामना कर रहा है जिससे उसके दोस्त आंखें चुरा रहे हैं। दुनिया वैसी नहीं है जैसी किताबों में पढ़ाई जाती है।
हाँ, दुनिया अनियमित है और अन्यायपूर्ण भी। तो जब सिस्टम ही काम नहीं कर रहा तो जॉब के पास क्या विकल्प बचता है? स्रोत के अनुसार वो सीधे ईश्वर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई या लीगल एक्शन की बात करने लगता है।
हाँ, ये बहुत बड़ा जोखिम है।
तो मेरा सवाल ये है, एक टूटे हुए सिस्टम में सीधे सर्वोच्च सत्ता के खिलाफ मुकदमा दायर करने की सोचना, क्या ये एक भयानक विद्रोह है या फिर इसे सत्य की सबसे गहरी पुकार माना जाए?
अगर दोस्तों के दृष्टिकोण से देखें तो ये पक्के तौर पर विद्रोह है। वे इसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते।
हाँ, उनके लिए तो ये बगावत है।
लेकिन वॉल्टन के अनुसार इसे अलग नजरिए से देखना होगा। जॉब एक कोने में अपना किला बना रहा है, दोस्तों से उसे कोई उम्मीद नहीं है, और ईश्वर को लेकर भी उसका नजरिया बिगड़ रहा है।
वो ईश्वर को एक शत्रु के रूप में देखने लगा है।
बिल्कुल, एक ऐसा शत्रु जो बिना कारण वार कर रहा है। लेकिन फिर भी, और ये बात ध्यान देने वाली है, जॉब अपनी धार्मिकता नहीं छोड़ रहा।
वो सत्य के साथ खड़ा है
कि अगर मैं सही हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये अंधे विश्वास से कहीं ज्यादा गहरी आस्था का प्रमाण है।
सही बात है, और यहीं से हम इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते हैं। आखिर जॉब चाहता क्या है, दोस्त क्या चाहते हैं और जॉब क्या चाहता है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। डॉक्टर वॉल्टन इसे सामान और सच्चाई के बीच का टकराव बताते हैं।
ये इस पूरी पुस्तक का सबसे अहम हिस्सा है। दोस्त जिस समाधान की वकालत कर रहे हैं उसे रेस्टोरेशन या बहाली कह सकते हैं। उनका फॉर्मूला बहुत सिंपल है।
क्या है वो फॉर्मूला?
वो कहते हैं कि जॉब, तुम बस मान लो कि तुमने कोई पाप किया है, खुद को दुष्टों की श्रेणी में रख लो, बस दिखावे के लिए ईश्वर से माफी मांग लो, जिसे अपीजमेंट कहते हैं। ऐसा करोगे तो तुम्हें तुम्हारा सारा सामान, संपत्ति, भेड़ें, रुतबा सब वापस मिल जाएगा।
मतलब वे कह रहे हैं कि सच्चाई को किनारे रखो, थोड़ा समझौता कर लो और अपना भौतिक फायदा देख लो।
एकदम
जॉब की मांग इसके बिल्कुल उलट है। वॉल्टन बताते हैं कि जॉब को अपना सामान नहीं चाहिए, वो विंडिकेशन यानी निर्दोष साबित होने पर अड़ा है।
हाँ, वो चाहता है कि दुनिया और ईश्वर के सामने ये साबित हो कि वो धर्मी है, और यही जॉब की अखंडता को परिभाषित करता है।
और दोस्तों को लगता है कि ये विंडिकेशन की उम्मीद मूर्खतापूर्ण है ना?
बिल्कुल, वे समझ नहीं पाते कि जब सब कुछ छिन गया है तो कोई इंसान भौतिक सुख से ज्यादा सच्चाई को महत्व कैसे दे सकता है।
इसे समझने के लिए हम आज के ऑफिस का एक बहुत ही सटीक उदाहरण ले सकते हैं।
अच्छा, बताइए।
मान लीजिए किसी पर ऑफिस में चोरी का बहुत ही गंभीर झूठा आरोप लगा हो, बात कोर्ट तक पहुंच गई है। अब सामने वाली ताकतवर पार्टी कहती है कि देखो, कोर्ट के बाहर समझौता कर लेते हैं, तुम बस चुपचाप गलती मान लो, एक गैग ऑर्डर पर साइन कर दो और हम तुम्हें करोड़ों रुपए दे देंगे, तुम्हारी नौकरी भी वापस मिल जाएगी।
ज्यादातर लोग शायद सोचेंगे कि सिस्टम सलंगला बेकार है, पैसे लो और जिंदगी आगे बढ़ाओ।
मिसाल है
ये, बिना किसी शक के मानव गरिमा की सबसे बड़ी मिसाल है। वॉल्टन के विश्लेषण का सार यही है कि जॉब के लिए उसकी इंटेग्रिटी किसी भी भौतिक रिस्टोरेशन से कहीं ज्यादा कीमती है।
वो दिखावे की माफी को सिरे से खारिज कर देता है।
बिल्कुल, वो स्पष्ट कर देता है कि अगर उसे बिना सच्चाई के सब कुछ वापस मिल भी जाए तो वो जीवन एक झूठ होगा, और उसका यही अडिग रवैया दूसरे दौर के अंत तक माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना देता है।
तो अगर हम इस पूरे दूसरे दौर जॉब 15 से 21 का निष्कर्ष निकालें तो हम देखते हैं कि संवाद पूरी तरह से विफल हो चुका है। दोनों पक्ष अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है।
हाँ, दोस्तों ने जॉब को दुष्ट घोषित कर दिया है, क्योंकि वरना उनका सिस्टम टूट जाता।
और जॉब ने भी उम्मीद छोड़ दी है, वो अपना केस सीधे ईश्वर के खिलाफ मजबूत कर रहा है, दिखावे के हर समाधान को ठुकरा देता है।
ये एक ऐसा मोड़ है जहां कोई आसान रास्ता नहीं है। ये सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, ये न्याय और सत्य को समझने की हमारी बुनियादी जरूरत पर बहुत गहरी टिप्पणी है।
बिल्कुल, और ये पूरी चर्चा आज के हमारे आधुनिक समाज पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है।
वो कैसे?
अगर सोचा जाए तो आज के दौर में किसी के अच्छे या बुरे होने का पैमाना क्या है? हम किसी की सफलता को उसके बैंक बैलेंस या सोशल मीडिया के दिखावे से नापते हैं।
हाँ, ये तो है।
अगर कोई सफल है तो हम मान लेते हैं कि वो इंसान बहुत गुणी होगा, उसने सही फैसले लिए होंगे। और अगर कोई इंसान संघर्ष कर रहा है, किसी विपत्ति का सामना कर रहा है, तो अक्सर समाज यही कहता है कि इसने जरूर कोई गलती की होगी या इसके काम करने के तरीके में ही कोई खोट होगा।
ये तो बिल्कुल जॉब के दोस्तों वाली बात हो गई।
एग्जैक्टली। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी आज की सोच भी जॉब के दोस्तों की उस दोषपूर्ण और पक्षपाती मानसिकता से पूरी तरह मुक्त हो पाई है, या आज भी हम उसी टूटे हुए कर्म फल के सिद्धांत को एक नए रूप में जी रहे हैं।
बहुत ही गहरा सवाल है ये।
शुरुआत में हमने बात की थी कि लोग उम्मीद करते हैं कि ब्रह्मांड एक मशीन है, सही काम करो सही फल पाओ, लेकिन जॉब की कहानी चेतावनी है कि ऐसा हमेशा नहीं होता।
शायद सबसे बड़ी परीक्षा ये नहीं है कि जब व्यवस्था टूट जाए तो उसे कैसे ठीक करें।
तो क्या है?
सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि जब वो व्यवस्था कुछ भी वापस ना दे रही हो, जब सब कुछ छिन गया हो और दुनिया आरोप लगा रही हो, तब भी क्या हम सच्चाई के लिए खड़े रहने की हिम्मत जुटा सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी इंसान के आत्मसम्मान की परिभाषा बदल सकता है, और मुझे लगता है इस पर विचार करना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है।